मार्काय मोता, पेज है 294। जमादी रूला सनाट हिजरी में ये वाक़या पेश आया। वजह क्या थी? उमरा और बादशाहों को रसूलुल्लाह ने जो ख़त लिखे थे, कब लिखे थे? सुलह हुदैबिया के बाद, सन 6 हिजरी और 7 के बीच में, ठीक है। इनके जिक्र में क्या बात हुई थी कि शरह बील बिन अमर गस्सानी ने हज़रत हारिस बिन उमैर अजदी को, जो रसूलुल्लाह का ख़त लेकर अमीरे बुसरा के पास गए थे, कत्ल कर दिया। याद होगा आपको कि कासिद का कत्ल बहुत बड़ा जुर्म था उस दौर के हिसाब से भी, और इन लोगों ने किया। ये हरकत एलाने जंग के मुतरादिफ थी, गोया कि हम आपसे जंग करना चाहते हैं। इसलिए जब आपको इस वाक़े की इत्तला हुई तो आप पर यह बात बहुत गिरां गुजरी, यानी मुश्किल लगी, आपको बुरा लगा। चुनाचे आपने 3,000 का एक लश्कर तैयार करके जैद बिन हारिसा को इसका सिपाही सलार मुकर्रर किया और फरमाया कि अगर जैद कत्ल कर दिए जाएं तो जाफर, और जाफर कत्ल कर दिए जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा अमीर होंगे। इस लश्कर के लिए आपने सफ़ेद परचम बांधा और इसे हज़रत जैद बिन हारिसा के हवाले किया और वसीयत फरमाई कि जहाँ हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु कत्ल किए गए थे, वहाँ पहुँचकर इस मुकाम के बाशिंदों को इस्लाम की दावत दें, और अगर वो इनकार करें तो लड़ाई करें। यहाँ पर आप देखिए कि कहाँ जा रहे हैं आप हमला करने, कितना बड़ा गिरोह है। यानी आज के दौर में आप बस एक ही लफ्ज़ कह दें इसके लिए, सुपर पावर। और अल्लाह के नबी को सिर्फ छेड़खानी की खबर मिलती है। 3,000 का लश्कर, जैद बिन हारसा सिपा सलार। इंस्ट्रक्शंस पढ़िए कि जैद कत्ल कर दिए जाएं तो जाफर, और जाफर कत्ल कर दिए जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा। ये जुबाने नबूवत से पेशन गोइयाँ हो रही थी, और आगे आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और सबको नसीहत की और चल पड़े, और साथ ही कह दिया कि जहाँ हज़रत हारिस बिन उमैर कत्ल किए गए थे, यानी जिनकी वजह से ये सारा इश्यू शुरू हुआ, वहाँ पहुँच कर लोगों को इस्लाम की दावत दें। ये बड़ी अजीब बात है। हम कहते गुस्से में भरे हुए थे, जज्बा इंतकाम में नहीं, ये जज्बा और गुस्सा होता और इंतकाम के जज्बे में होते तो खून उतरा होता, फिर इस्लाम की दावत तो नहीं दी जाती। तो असल में ये इस्लाम के नाम को और अल्लाह के कलमे को बुलंद करने की कोशिशें थी। आपने फरमाया, अल्लाह के नाम से अल्लाह की राह में अल्लाह के साथ कुफर करने वालों से गज़वा करो, और देखो बदहदी ना करना, खयानत ना करना, किसी बच्चे, औरत और फना के करीब बुढ़े को, यानी मौत के करीब, और गिरजे में रहने वाले तारिक को, दुनिया को कत्ल ना करना, राहिब यानी जो बेज़र्र लोग हैं तुम उनको नहीं छेड़ना, खजूर और कोई दरख्त ना काटना, और ना किसी इमारत को गिराना। आज की जंगों को देख लीजिए, किसी एक जंग के फिगर्स आप जाके इंटरनेट से और गूगल से चेक कर लीजिए। मैंने पिछली क्लासेस में ईरान और इराक में एक वॉर हुई थी आज से कई साल पहले, उसके फिगर्स पढ़ के सुनाए थे, और वो उनकी अपनी रिपोर्टें हैं जो लोग दुनिया में आज अमन की बातें करते हैं, कि हमला करने के चंद घंटों के अंदर सारी पोल्ट्री ख़त्म हो गई, इतने घंटों के अंदर पानी के रिसोर्सेज पे हमला हुआ तो पानी ख़त्म हो गया शहर में, और इस तरह की इंसानियत सोच चीज़ें। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, देखो किसी को दुख न देना। सिर्फ उनसे लड़ते थे मुसलमान जो सामने आ गए हैं, अब उनको तो आप नहीं छोड़ेंगे ना। सामने आपके कॉकरोच हो तो आप क्या उसको नहीं मारेंगे? बाकी जो घरों में लोग थे उनको जंगों का कोई ख़तरा नहीं होता था कि हम सो रहे हैं तो पता नहीं हम पे बॉम ही ना गिर जाए। हालांकि तोपे और गोले बारूद उस दौर में भी होते थे, क्या आप सोचे कि शायद मुमकिन नहीं, लेकिन इजाज़त नहीं थी, बेगुनाहों पर नहीं उठाया जाता था हाथ। बहरहाल सनियतुल विदा तक लश्कर के साथ आप भी तशरीफ़ ले गए, फिर इसे अलविदा कहा। इससे पता चलता है कि जहाँ तक हो जाने वालों को रुख्सत किया जा सकता है। इस लश्कर ने जनूबी उर्दन पहुंचकर मान के मुकाम पर पड़ाव डाला। वहाँ इसे मालूम हुआ कि हिरकल 1,00,000 का लश्कर लेकर मुआब में खेमा जन है, ये जगह का नाम है, इसके साथ मजीद 1,00,000 नसरानी अरब भी शामिल हो गए। हाईलाइट करिए, मुसलमान कितने? 3,000। हमें तो वो भी ज़्यादा लग रहे हैं पिछली जंगों के मुकाबले में। और दुश्मन कितने? 1,00,000 तो उसकी फ़ौज में ऐड हुए हैं, कुछ और भी तो होंगे ना। मुसलमान आज वाले हालात पे लेके देख ले, हाथ कांपते हैं, कोई तकाबुल है 3,000 और 1,00,000 का? वल्ला ही नहीं है। इस इत्तला पर मुसलमानों ने 2 रात मशवरा किया कि आया रसूलुल्लाह को लिखकर आपसे मदद तलब करें, यानी उनको भेजें कि और लोग भेजें, या जंग में कूद पड़े। इब्ने रवाहा ने यह कहकर इनको गरमा दिया, यानी जोश दिला दिया कि अब आप लोग जिस बात से कतरा रहे हैं, यानी शहादत, ये वही चीज़ है जिसकी तलब में हम निकले हैं। उन्होंने कहा, हम तादाद और कसरत और कुव्वत के बल पर नहीं लड़ते, बल्कि हमारी लड़ाई इस दीन के बल बूते पर है जिससे अल्लाह ने हमें नवाजा है। हमारे सामने दो खूबियां हैं, गलबा या शहादत। लोगों ने कहा, वल्लाही इब्ने रवाहा सच कहते हैं। यहाँ तो मुख्तसर है ना, पढ़ के देखिए, यकीन करें इंसान का अंदर तक खुश हो जाता है, खून गर्म हो जाता है कि उस वक़्त कुछ ने कहा छोड़ दें, गिव अप कर दें, अल्लाह के नबी को कह देंगे हम वापस आ रहे हैं क्योंकि अनअचीवेबल टारगेट है। कोई कह रहा है अच्छा जी, उन्हें कहते हैं जी अगर जंग करानी है तो और लोग भेजें, कोई कुछ, लेकिन एक लीडर खड़ा हुआ है, उसने कहा लड़ते हुए मरोगे ना, तो मरना ही कोई तो चाहते हो। देखिए सहाबा कराम घरों से शहादत की दुआएं करते हुए, तमन्नाएं करते हुए जाते थे, क्यों? क्योंकि उनको अजर पता थे, अल्लाह के दीन के दिफा में जान भी लग जाए तो ये इंसान के लिए फ़ायदे का सौदा है। लिहाजा इंसान अपनी फ़िक्र करे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहरहाल वो खड़े हुए तो सब खड़े हो गए, कहा ठीक है, लीडर्स खड़े हो जाएंगे ना बाकी भी खड़े हो जाएंगे। और लीडर्स के नहीं, मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल नहीं, 5 दिन 4 दिन 6 घंटे, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, इतना दूर जाना, इतनी गाड़ियाँ चाहिए होंगी, नहीं 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 बस बाकी तो वहीं ठुस होंगे। तो देखिए दूसरों के लिए अच्छे मियार कायम करें। आप अकेले थे ना जब अपनी ज़ात के लिए, तो आप कुछ करें या ना करें इसका फ़ायदा या नुकसान आपको होता था। अब जब अल्लाह आपको आगे ला रहा है ना, आपके दिन ब दिन रोल बढ़ते जा रहे हैं, मुकाम बढ़ रहा है, तो फिर अपने लिए मुश्किल हालात में भी नेकी के काम करने की नीयत करें ताकि दूसरे आपको देख कर ये मेयार कायम करें। वरना अगर आप देखिए कि दीन के काम में मदद करने आ रहे, जिसको आप स्टाफ कह लें आज की ज़ुबान में, वॉलंटियर्स कह लीजिए, टीचर्स कह लें, क्लास इंचार्जेस कह लें, ग्रुप लीडर्स कह लें, अगर वो अपनी मजबूरियों पे पहले से रुक के घर बैठ गए तो स्टूडेंट को कैसे रोकेंगे? और नतीजा क्या होगा? जब कोई स्टूडेंट कहेगा इसलिए नहीं, अब कहेगा हाँ बात मजबूरी है ना, तो मजबूर होना छोड़ दें, यहाँ ये अमल की बात है, अल्लाह के काम करने हैं तो मजबूर होना छोड़ दें बस। बल्कि उस वक्त में तो मुस्कुराया करें कि आज ही लगता है कोई ऊपर आसमान पे मेरी बातें होनी है कि देखो इन हालात में भी आ गई है। फिर आप देखेंगे ईमान की जो चाशनी आपको मिलेगी। एक वक्त आता है ईमान वाले के पास यही चंद छोटी छोटी नेकियां रहती हैं जिस पे आस रखता है कि क़यामत के दिन अल्लाह को दिखा दूंगा कि उस दिन ये हालात थे लेकिन मैंने ये किया, उस दिन ये नहीं मुमकिन था लेकिन मैंने तेरे हुक्म और अपने शौक से ये काम कर लिया। अब अगर ये अमल पसंद है तो आज मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल के मुझे जन्नत दे दे। क्योंकि आप देखिए कि एक वक्त आता है बंदे को ये पता ही नहीं चलता कि मैं नेकी का काम जन्नत के लिए कर रहा हूँ, सवाब के लिए कर रहा हूँ या किसी और फ़ायदे के लिए, बल्कि वो नेकी उसके वजूद का हिस्सा बन जाती है, पैशन बन जाता है। फिर उसको ये नहीं लगता कि मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद मुझे कुछ इसके बदले में चाहिए, वो तो उसका अपना अमल है। मिसाल देती हूँ कि जैसे एक मौके पे मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या हमें कुरान की तिलावत सुनने का अब सवाब होता होगा? क्यों? मैंने कहा इसलिए कि अब इसमें मज़ा आता है, दिल चाहता है, जैसे कभी किसी का गानों पे दिल चाहा होगा ना, गज़लें और फिल्में देखने को दिल चाहता होगा। अब अगर किसी का तिलावत सुनने को दिल कर रहा है तो ये तो अपने ही नफ्स के लिए हम सुन रहे हैं, तो फिर क्या फिर भी अजर है? तो उस पर उन्होंने यही कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये चॉइस बदली, अजर फिर भी है। तो बस दफ़ा नेकी शौक बन जाती है, और जब नेकी शौक बन जाए ना फिर नेकी नेकी बनती है, फिर नहीं कोई आपको रोकेगा, फिर बीमारियों में तो और ज़्यादा आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं। तो दीन के काम जब आपको खुशी दें, लज्जत दें, तो बीमारी सेहत हर हाल में आप करेंगे। फिर ये नहीं कि चलो आज घर से ही सुन लेते हैं, चलो ना वही बात है ना, वहाँ भी जाके बैठना ही था, और वैसे भी देखे उस्ताजा भी तो आजकल नहीं है ना, वो भी तो बाहर से पढ़ा रही है ना, तो मैं भी घर से बैठ के सुन लेती हूँ। आप सोचिए ज़रा अपने ऊपर लेकर, आप घर से निकलकर स्कूल में आके पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहली बात आपकी कमिटमेंट, फर्ज, हर मुमकिन कोशिश करूँगी। दूसरी बात, तो पता क्या चला कि एक इंसान जब आसानियों वाला मामला मांगता है ना तो आसान हो जाता है, फिर उसके बाद अगला एक सवाल भी खुद से हो सकता है। वहाँ जाने के अजर से तो कमी हुई, वहाँ बैठ के जो फोकस होता है क्या वही है घर में? उसी तरह बैठती हूँ, सेलफोन बंद, टेक लगाई हुई है, स्काफ पहना हुआ है। घर में माहौल ये तो नहीं बना हुआ कि साथ बच्चों को खाना भी दे रही हैं और साथ कानों से आवाजें भी टकरा रही हैं। मैं क्यों मजबूर हो गई? वो तो पाँव पे छाले पहनने करने के बावजूद पट्टियां बांध के चल गए थे जातो रेखा में। मैं क्यों ढीली हो गई? खुद से खुद पूछें, दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं पूछेगी। सीरत तो हम सबको अपना ही मुहासबा सिखाती है। बहरहाल आगे देखिए होता क्या है। सब तैयार हैं, सब चल पड़े कि ठीक है जी, कम है कि ज्यादा, हमने वहीं जाना है, मर जाएंगे ना फिर क्या, इसी के लिए तो निकलते हैं घरों से। चुनाचे उन्होंने आगे बढ़कर मूता में पड़ाव डाला। अच्छा, हमारे यहाँ मारूफ है मौता, क्योंकि उर्दू में मौत है ना, तो ये लफ्ज़ मौता नहीं मूता है, मीम पे पेश डाल लीजिए, जगह का नाम था। फिर वहीं लश्कर को तरतीब दिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, एक खौफनाक और संगीन मार्का शुरू हो गया जो तारीख इंसानी का अजीब तरीन मार्का था। 3,000 जानबाज 2 लाख के लश्करे जरार का मुकाबला कर रहे थे। जरार यानी जुर्रत से लड़ने वाला, और दू बदू डटे हुए थे यानी आमने सामने वन ऑन वन बेस पे। मुराद ये के 3,000 सिपाही मुसलमानों के 2 लाख दुश्मनों के, एक के आगे कितने आ रहे हैं जरा हिसाब लगा के देख लें, 2 लाख। आज देखिए, हमने कभी इतना बड़ा मजमा कहीं देखा नहीं होगा अपनी खुली आंख से। साहबा के दिलों पे क्या होता होगा? ऐसे नहीं लग रहा आटे में नमक, चींटियों की तरह दौड़ रहे हैं कहीं बहुत बड़े लश्कर के बीच में। क्या हौसले थे, क्या जुर्रतें थी, क्या ईमान था, अल्लाह मुझे भी यही दे दे और आपको भी। और डटे में कोई हिम्मत नहीं टूटी। उनके पास हथियार, भारी भरकम लश्कर, और इधर बेचारों के पास क्या होता था, हथियारों से लैस ये भारी भरकम लश्कर दिन भर हमले करता और अपने बहुत से बहादुर गंवा बैठा था, यानी इसके बावजूद काफिरों ही का नुकसान हो रहा था। लेकिन इस मुख्तसर सी नफरी को पस्पा करने में कामयाब नहीं होता था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों का आलम यानी झंडा पहले हजरत जैद बिन हारिसा ने लिया, फिर वो लड़ते रहे यहाँ तक कि दुश्मन के नेजों में घुत गए और खिल्लत शहादत से मुशर्रफ होकर ज़मीन पर आ पड़े। खिल्लत कहते लिबास को, खूबसूरत मुहावरा है ये बेसिकली कि शहीद हो गए। इतने तीर लगे कि जिस्म में तीर ही तीर हैं, फिर भी नहीं भागते थे। एक तीर लगे हम के हाय मैं मर गई, मैं नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ, चोट लग गई है, अब नहीं, शहीद हो गए। इनके बाद हजरत जाफर ने अलम संभाला। क्यों भला? क्योंकि अल्लाह के नबी की इंस्ट्रक्शन यही थी। मैदान जंग में इनको नहीं भूलती थी इंस्ट्रक्शंस, अमन की बात तो क्या बात है। जब लड़ाई की शिद्दत शबाब को पहुंची तो अपने सुर्खों स्याह घोड़े की पोछ से कूद पड़े, कूंचें काट दी यानी नीचे पाँव के साथ जो पट्टे होते हैं ना मसल्स, वो काट दिए घोड़ों के, वार पर वार किए, यहाँ तक कि इनका दायां हाथ काट दिया गया, राइट हैंड कट गया। उन्होंने फिर झंडा बाएं हाथ में ले लिया लेफ्ट साइड पे और बुलंद रखा, यहाँ तक कि इनका बायां हाथ भी काट दिया गया। सोचे, पहले राइट, तकलीफ हुई होगी, सोचिए, फिर बायां पकड़ लिया। हम तो आराम से पढ़ रहे हैं ना, एक कट्टा फिर दूसरा पकड़ लिया, आप सोचिए, हाथ एक कटता तो पहले तो वो डॉक्टर पे भागते, 911 को कॉल करते, एम्बुलेंस आती कि जी वो हाथ कट गया। वल्लाही अल्लाह सारे बीमारों को सेहत दे दे, यहाँ देखिए बीमारी नहीं है, ये तो हादसा है, हाथ कटा हुआ है। कोई क्या आप हमें स्कूल बुला रहे हैं, हमारा तो हाथ कटा हुआ है। नहीं, बायां हाथ, दायां हाथ, और झंडे को बुलंद रखा, यहाँ तक इनका बायां हाथ भी काट दिया गया। फिर दोनों बाकी मंदा बाजुओं की मदद से झंडा आगोश में ले लिया, जिसको टुंड कहते हैं ना, अगले हिस्से आधे कटे तो हाथ के जो अगले थोड़े थोड़े हिस्से हुए उसमें झंडा ले लिया। दर्द नहीं होती थी, खून नहीं निकलता था इनको, हार्ट अटैक नहीं हो जाता था दर्द की शिद्दत से, लेकिन जोश जज्बा, जैसे आप देखिए आप बड़े जोश से काम कर रहे होते हैं ना, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं और शौक से आप काम कर रहे हैं, कई दफ़ा प्याज काटते हुए उंगलियों पे कट लगते हैं, किसी को याद ही नहीं, फौरन मैं देखा औरतें पानी के नीचे हाथ रखती हैं ताकि वो खून के कतरे बह जाएं, फिर काम में लग गए। वो रात को बिस्तर पर लेटे तो सारी चोटें याद आती हैं, पाँव सूजे में, हाथ कटे में, खाया तो है ही नहीं खाना, तो पेट में दर्द है, तो सर में दर्द है, लेकिन जोश था ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, ये लज्जत आशनाई बंदे को फिर मार देती है। लिहाजा झंडा नहीं गिरने दिया यहाँ तक के वो नेज़ों और तीर के 90 से ज़्यादा ज़ख़म खाकर खिल्लत शहादत से सरफराज हो गए। अल्लाह, 90 दफ़ा शैतान आया होगा उनके पास कि तुम किसके कहने पे लग गए हो, मुश्किलों में पड़ गए हो, तुम्हें क्या मुश्किल है, क्या घर बैठे तुमने जान पे मुश्किल ले ली है, कमिटमेंट कर ली, बड़े शौक से रोज़ जाना पड़ेगा और आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं और माइनस भी होगा और स्नो भी होगी, फिर छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आती हो, ये और वो अल्लाह ही जाने क्या क्या उज़र बहाने शैतान ने डाले होंगे, लेकिन 90 बार उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही को सच किया होगा। और मज़े की बात देखिए, ये सारे ज़ख्म इनके जिस्म के अगले हिस्से में आए थे, इसको हाईलाइट करें, यानी इतने तीर खा के भी नहीं पलटने का सोचा कि पुश्त पे तीर लग जाए। माएँ ये पैगाम दे के भेजा करती थी बेटों को कि तीर सीने पे खाना, पुश्त पे ना खाना, ऐसा हो कि पता चले कि तुम वहाँ से पलट रहे थे और पीछे दुश्मन ने तुम्हें पकड़ लिया, क्योंकि मैदान जंग से पलटना कबीरा गुनाह है, इस्लाम को छोड़ना। अब देखिए, मैं अक्सर सोचती थी कि ये क्या बड़ी बात है, हमारे दिन में कबायर में आता है शराब, जुआ, जिना, सूद, चलें किसी हद तक आजकल तो वो भी नहीं दिल करता कहने को लोगों का, लेकिन बहरहाल मान लिया, ये मैदान जंग से भागना क्यों बड़ी बात है भाई, कबीरा गुनाह जी, इसलिए कि इस्लाम को पीछे डाल के अपनी जान बचा ली, क्योंकि जब कोई मैदान जंग से भागता है तो कोई मुश्किल ही हालात होते होंगे ना, तो गोया कि इस्लाम को तनहा छोड़ दिया और आप चल पड़े अपनी जान बचाने। अब आप लिखिए ज़रा, मैदान जंग से भागने को दीन के काम की कमिटमेंट से भागना, आप एक्सपेक्टेड थे रिसेप्शन पे सुबह 8:45 पे, आप एक्सपेक्टेड थे कि यहाँ आपको 2:15 से 2:30 तक रहना है, आप पहले ही भाग गए, मुड़ गए, इधर उधर हो गए, सिस्टम ख़राब हुआ कि नहीं हुआ। यकीन करें, अपनी जंगें अपनी ड्यूटीज़ को ले लें कि मेरी ड्यूटी मेरी जंग की जगह, जैसे वहाँ से हिलने से नुकसान होता था ना, यहाँ से हिलने से भी नुकसान होगा, मेरी ड्यूटी ऑफिस में, मैंने ऑफिस छोड़ दिया तो मेरा नुकसान हो गया, फिर कमिटमेंट होगी हमसे इंशाल्लाह। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा की बारी थी, उन्होंने झंडा लिया, आगे बढ़े, फिर अपने मा नामी घोड़े से उतरकर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इनकी शहादत पर झंडा हज़रत साबित बिन अरकम ने थाम लिया ताकि गिरने ना पाए, ये है असल गोल, झंडा नहीं गिरने देना, और मुसलमानों से कहा कि आप लोग किसी आदमी पर इत्तेफाक कर लें, यानी अब आप चूज़ करें कि कौन आ गया है। लोगों ने हज़रत खालिद बिन वलीद पर इत्तेफाक कर लिया और इस तरह झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार की तरफ मुंतकिल हो गया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर इतनी पुरजोर और बेनज़ीर जंग की कि इनके हाथ में 9 तलवारें टूट गईं। नया नाम लगा होगा आपको, ये न्यू कमर्स में से, ओल्ड स्टाफ नहीं है, बिल्कुल नया बंदा, पहले दुश्मनों की तरफ से आते थे, अल्लाह ने अब इस्लाम दे दिया। हज़रत खालिद ने आगे बढ़कर इतनी पुरजोर और बेनज़ीर जंग की कि इनके हाथ में 9 तलवारें टूट गईं। इधर रसूलुल्लाह ने सहाबा को मदीना में इसी दिन तीनों सिपा सलारों की शहादत की खबर दी, वहाँ से ज़ुबान नबूवत की बातें लोग सुन रहे हैं कि अब वहाँ ये हो रहा है, कुछ चैनल्स तो थे नहीं जहाँ से खबरें नशर होती जंग की, लेकिन वही का चैनल उस वक्त भी मौजूद था और बताया कि अब कमान खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गई है और इन्हें अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार करार दिया। सैफुल्ला लक़ब था खालिद बिन वलीद का, मैंने इस पर एक अलग से दर्स दिया हुआ, यकीन करें ईमान ताज़ा हो जाता है। इसी तरह 2011 के दिसंबर में जब हम लोग यूके ट्रिप में आयरलैंड गए थे तो वहाँ भी इसी टॉपिक को बच्चियों के साथ शेयर किया था, खालिद बिन वलीद कैसे शाहसवार थे, सारी ज़िंदगी मैदान जंग में रहे और बिस्तरे मर्ग पे मर रहे हैं, और कहा करते थे कोई बुज़दिलों को पैगाम दे दे कि मेरे जिस्म का कोई अंग सलामत नहीं है, हर जगह तीर तलवारों के ज़ख़म है, लेकिन मौत फिर भी घर में आ रही है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि अल्लाह के रास्तों में जाके कट मरी जाए। और उनकी बीवी कहती हैं कि जिस दिन अल्लाह के नबी ने आपको सैफुल्ला का लकब दिया था, मैं उसी दिन समझ गई थी कि आप मैदान जंग में नहीं मरेंगे, क्योंकि अल्लाह की तलवार काफिर के हाथ से नहीं टूट सकती। कितने समझदार और अक्लमंद लोग थे वो, हालांकि कम पढ़े लिखे थे, सीधे साधे थे। दिन ख़त्म हुआ तो दोनों फरीक अपने अपने कैंपों में वापस आ गए। सुबह हुई तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने लश्कर की तरतीब बदल दी, पीछे को आगे और आगे को पीछे, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं कर दिया, यानी चेंज कर दिया, फ्रेश अप कर दिया माहौल को। वो चीज़ें जो बहुत दिन से रैक्स में सामने लोग देखते थे, उसको निकाल के पीछे कर दिया, पीछे को आगे, अंदर से बाहर और बाहर वाली अंदर रखी। और आपको तो क्या, ये स्ट्रेटेजी बड़े बड़े स्टोर्स वाले करते हैं, ये जो आप जाते हैं ना हर 2 वीक के बाद, आप कहते हैं अच्छा वॉलमार्ट में तो अब सारी नई चीज़ें आ गई हैं, वो नई नहीं आई होती। एक तो नीचे वाली आगे और आगे वाली बाहर, यानी प्रोमिनेंट कर देते हैं और दूसरों को छुपा देते हैं, दूसरे अपनी डिफरेंट ब्रांचेस की चीज़ें इधर से उधर घुमाते रहते हैं। 1 महीना 2 महीने जो लोग एक ही जगह पर रहते हैं वहीं आते होंगे ना, तो वो सारी चीज़ें ट्रकों में भर के दूर वाले वॉलमार्ट में ले जाते हैं और वहाँ वाली इधर ले आते हैं। ये एक पूरी मैनेजमेंट है, पढ़ी होगी आप में से भी कुछ लोगों ने, तो सीखने की बातें हैं कि बाज़ दफ़ा हम एक ही माहौल में कई दिनों महीनों से बैठे रहते हैं। तो ज़रा फ्रेश कीजिए, चीज़ों को हटाइए, इधर से चीज़ उधर, उधर से इधर, कि ताकि एक फ्रेश लुक दिखे, और उसमें कई चीज़ें फिर सामने भी आ जाती हैं। बहरहाल ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी। दुश्मन ने समझा कि मुसलमानों के पास मदद आ गई है, इस पर रोब छा गया। हज़रत खालिद ने हल्की सी झड़प के बाद लश्कर को पीछे हटाना शुरू किया, लेकिन दुश्मन को आगे बढ़ने की जरूरत ना हुई। इसे खतरा था कि ये कोई चाल ना हो, फिर भी डर रहे हैं। मजे की बात देखिए, कितने मुसलमान आटे में नमक और काफिर उससे डर रहा है। इसे खतरा था कि कोई चाल ना हो, इस तरह मुसलमान मूता की तरफ सिमट आए और 7 दिन तक दुश्मन से झड़प करते रहे। फिर दोनों फरीक रुक गए और लड़ाई ख़त्म हो गई, क्योंकि रूमियों ने समझा कि मुसलसल मदद पहुंच रही है और वो चाल चलकर रूमियों को सहरा में घसीट ले जाना चाहते हैं, जहां से बच निकलना आसान नहीं। यानी मुसलमान यूँ कह रहे थे जैसे पीछे हो रहे थे, आप इमेजिनेशन में लाएं। पहले सारे एक जगह इकट्ठे हुए, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि बिखरे बिखरे मुसलमान होते तो कोई ना कोई काफिर वहां जाके मारता। सारे मुसलमान इकट्ठे हुए, जब इकट्ठे हुए तो मुता के मुकाम पे आ गए, आ गई इतनी जहन में, तो गोया कि इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई। कोई दुश्मन अगर एक मुसलमान को मारना चाहते तो बाकी 4 भी तो देख ही रहे होंगे ना वहाँ खड़े, वो दिफा करते तो मजबूती है। फिर ऐसे ऐसे पीछे सिरक रहे थे, इमेजिन करें मदीना की तरफ, तो इनको लगा कि हो ये पीछे बार बार जा रहे ना, ये हमें सहरा में जाके मारेंगे, जहाँ से बच निकलना आसान नहीं। इस तरह इस जंग में मुसलमानों का पलड़ा भारी रहा। अल्लाह अकबर। इस गजवे में 12 मुसलमान शहीद हुए, दुश्मन खासी तादाद में मारे गए, मगर इनकी तादाद मालूम ना हो सकी। लिखिए ज़रा कितने मुसलमान हैं, ओनली 12 आउट ऑफ 3,000, और दुश्मनों का तो पता ही नहीं कितने थे, 2 लाख तो आए थे। क्या कहेंगे आप, क्या आज ऐसा ईमान और कोई इस्लाम हमें दिखता है? आज भी आप देखिए कि कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क की आर्मी 3,000 से तो कई गुना ज़्यादा होगी, हज़ारों की तादाद में फ़ौजी होते हैं, लाखों की, लेकिन क्यों जरूरत नहीं है, ईमान नहीं है। सरिया ज़ातुस्सलासिल जमादिल आखिरा सन 8 हिजरी में हुआ। मार्का मूता में शामी यानी शाम से आने वाले अरबों का जो मौक़ था, इसके पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे हकीमाना इकदाम की ज़रूरत महसूस की जो इन्हें रूमियों की मदद से बाज रख सके। चुनाचे आपने हज़रत अमर बिन आस को 300 सहाबा और 30 घोड़ों के साथ रवाना किया। चूंकि हज़रत अमर की दादी इनके कबाइल में से एक कबीला बला से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए मकसूद ये था कि इनके दिल की नरमी की जाए, यानी इनको खुश किया जाए, तालीफ़ कल्ब, यानी टू सॉफ्टन देयर हार्ट्स, कुछ ऐसा इनके साथ एहसान का मामला किया जाए कि इनके दिल इस्लाम की तरफ झुके। लेकिन अगर वो इनकार करें तो रूम की ताईत में खड़े होने पर इनको सबक सिखाया जाए। हज़रत अमर करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि उन्होंने बड़ी फ़ौज फराहम कर रखी है। चुनाचे हज़रत अमर ने रसूलुल्लाह से मदद तलब की। आपने हज़रत उबैदा बिन जराह की क़्यादत में 200 सरबरावर्दा मुहाजरीन और अंसार की मदद भेजी, लेकिन अमीर आम और नमाज के इमाम हज़रत अमर बिन आसी थे। कुमक आ जाने के बाद उन्होंने खुदाया के इलाकों को दूर तक रौंदा। एक लश्कर से सामना हुआ, लेकिन जब मुसलमानों ने हमला किया तो वह इधर उधर भाग कर बिखर गया। सलासिल वादिल कुरा से आगे एक खित्ते ज़मीन है और एक चश्मे का नाम है, इसी की तरफ ये सरिया मंसूब है क्योंकि मुसलमानों ने यहीं पड़ाव डाला था। ये सरिया जमादुल आखिरा सनाट हिजरी में यानी गजवा मूता के एक महीने के बाद भेजा गया। सेम कहानी, वही हौसले, वही जुर्रत, वही सब कुछ जो उनको पीछे नहीं करती थी। ये वो चीज़ें हैं कि जो एक इंसान के अंदर को खोल के रख देती हैं। अब आप देखिए कि ये दोनों गजवात और इसके पहले की बातें जो हम अभी तक पढ़ चुके, हम सब के लिए कायन है। हम ये तो चाहते हैं कि मक्का फतह हो, लेकिन ये बीच के मरहले तय नहीं करते।